ओम शांति। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मुरली कैसे सुनना चाहिए। कौन बताएगा मुरली कैसे सुनना चाहिए? जी आत्मिक स्थिति में और बाबा पढ़ा रहे और बाबा पढ़ा रहे हैं और जी हाँ अनुभव करना चाहिए। ये पॉइंट ये हम चाह रहे थे सुनना। तो बाबा ने एक मुरली में बताया है कि मुरली कैसे सुने, अनुभव करते जाएं उसे, है ना। अनुभव करते जाएं अर्थात अनुभव करते जाएं अर्थात बुद्धि से देखना। किससे देखना? बुद्धि से, है ना। कई बार किसी का ध्यान कहीं और रहता है ना, कुछ और सोच रहे हैं और सामने क्या रखे हैं, कोई पूछे सामने क्या हो रहा था तो क्या कहेंगे? तन में थे यहां लेकिन बुद्धि कहीं और थी, है ना। तो इसीलिए बच्चों को भी क्या कहते हैं, ध्यान से करना, ध्यान से जाना, ध्यान से पढ़ना, केवल पढ़ना नहीं लेकिन ध्यान से अर्थात बुद्धि से देखना। तो इसीलिए जब भी मुरली सुनते हैं तो क्या करें, उसे बुद्धि से देखें। अगर आप बुद्धि से देखेंगे तो मुरली फिर भूलेगी नहीं। मुरली केवल पॉइंट जो है केवल उसको याद कर लेना नहीं, उसे देखना, जो भी बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं उसे देखना। तो यदि आप देखते हैं ना तो भूलेंगे नहीं। जैसे मान लो बाबा ने कहा अमरनाथ, तो अमरनाथ एक सेकंड के लिए ही सही अमरनाथ को देखे, है ना, अमरनाथ कर। सोमनाथ का मंदिर के बारे में कहते हैं उसको इमर्ज किया सोमनाथ, सामने दिखाई दे, है ना। केवल ऐसे नहीं सोमनाथ फिर हम केवल सब सुन रहे हैं, नहीं, जो सुन रहे हैं उसे देखे। इसीलिए क्या होता है आजकल, जैसे मान लो आप अपना यहाँ मोबाइल रखते हैं या कोई भी वस्तु रखते हैं तो क्या करते हैं, हमको मालूम है कि हम यहाँ रखते ही हैं तो हम देख रहे हैं इधर और यहाँ रखा हमने। तो फिर बाद में अगर गुम हो गया मोबाइल तो हमें याद ही नहीं रहेगा हमने कहाँ रखा, क्योंकि हम देख तो इधर रहते हैं रख रहे थे यहाँ। तो इसीलिए जब कोई चीज रखें भी, छोटी सी भी चीज रखें या देख, तो क्या करें, देखते हुए रखें। ये हो गया ध्यान। तो अगर ऐसा करेंगे तो कोई चीज आपकी भूलेगी नहीं, है ना। नहीं तो कई लोग चश्मा लगाए रहते हैं और चश्मा ढूंढते हैं, मेरा चश्मा कहाँ है, क्यों? तो इसीलिए इसको जब ध्यान देंगे देखते रहेंगे तो भूलेंगे नहीं। इसीलिए कोई भी छोटी सी भी चीज है उसको देखते हुए, है ना। तो यही जैसे इन आंखों से देखते हैं चीज को, तो अगर आप कहाँ रखा था हमने मोबाइल, तो आपने देखते हुए अगर रखा ना तो आपको याद रहेगा, अच्छा मैंने टेबल पर रखा था, ये सीन याद आ जाएगा, आपने ऐसे रखा था ना वो, और सब भूल जाएगा लेकिन वो जो आपने ध्यान से देखते हुए किया वो याद रह जाएगा। तो ऐसे टाइम पर जब कोई चीज गुम होती है तो ये काम आता है, क्योंकि आपने ध्यान से किया था ना। तो ऐसे ही जब मुरली भी सुनते हैं तो किससे देखें, बुद्धि से। जैसे बाबा ने कहा सतयुग, तो सतयुग क्या, सतयुग के बाद हम फिर आगे चले गए तुरंत। सतयुग मीन्स क्या, एक सेकंड के लिए ही सही हम सतयुग को देखें। सतयुग कैसा है, वहां महल कैसे होंगे, बहुत बड़े होंगे ना, यहां जितने तीन चार मंजिल का मकान होते हैं ना, वहां एक ही मंजिल इतना होगा, एक ही मंजिल होंगे, दो मंजिल तो होंगे नहीं लेकिन बहुत ऊंचे ऊंचे होंगे। तो आपने देखा ऐसे महल, कैसे महल है, वहां गार्डन कैसे होंगे, वहां नदी कैसी होगी। सतयुग में नदी कैसी होगी, कैसी होगी, बाबा ने बताया जी, सतयुग में पानी कितना होगा ये बताइए, नदी में कितना पानी होगा सतयुग में? पानी उसकी गहराई कितनी होगी? बाबा ने साकार मूल्य में बताया है जी, कितना? 6 फुट। और कोई? 8 फुट। बाबा ने एक मुरली में कहा है सतयुग में नदी में कहीं भी कमर से ज्यादा पानी नहीं होगा, इतना ही पानी होगा। और पानी इतना क्लीन होगा कि आप ऊपर से देखेंगे तो नीचे तक जरूरत ही नहीं होगी वहां। तो इस प्रकार से, तो जैसे सतयुग बाबा ने कहा तो आपने महल देखे, नदियां देखा, गार्डन देखा, वहां देवी देवताएं, उनको देखना। तो ऐसे जब देखेंगे ना फिर आपको मुरली याद रहेगी। केवल आपने सुना सतयुग, हमने एक बार देखा भी नहीं सतयुग कैसा। तो इसीलिए जब भी मुरली सुने तो क्या करें, उसे हम बुद्धि से देखें। तो जैसे कि आज बाबा ने कहा कि तपस्या का फाउंडेशन क्या है, तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य अर्थात, बेहद का वैराग्य अर्थात एक होता है जैसे हद का वैराग्य। हद का वैराग्य होगा तो क्या करेगा, कोई घर से कोई नाराज हो गया ना तो अपना घर छोड़ के चल देगा, ये हद का वैराग्य। एक घर छोड़ा फिर रहेगा तो किसी घर में ही जाके, केवल अपना घर छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया, लेकिन धरती को तो नहीं छोड़ा ना। यहां अगर किसी को वैराग्य आता है तो अपना शहर छोड़ देगा, अपना गांव छोड़ देगा, लेकिन जाकर कहीं भी तो रहेगा ना धरती पर, कि छोड़ देगा धरती भी। अगर वैराग्य है तो कहे ना भाई हम गांव में नहीं रहेंगे, तो किसी गांव में मत रहो। तो अपना गांव तो छोड़ दिया लेकिन दूसरे गांव में क्यों रहते हैं फिर, है ना। तो बेहद का वैराग्य अर्थात इस देह की दुनिया को ही छोड़ देना, है ना, देह की दुनिया को ही छोड़ देना, ये हो गया बेहद का वैराग्य। और इसका भी सहज तरीका बाबा ने क्या बताया है, एक मुरली में बाबा ने कहा है, इसमें बहुत सहज बात है, उसमें दो बातें एक साथ होती है। बाबा ने कहा कि आप छोटी छोटी बातों को छोड़ो, है ना, छोटी छोटी बातों को छोड़ो तो क्या होगा। यदि आप छोटी छोटी बातों को छोड़ेंगे तो बाबा ने कहा बेहद का वैराग्य, बेहद का वैराग्य और स्वमान की स्थिति, दो चीज होगा ना, एक बेहद का वैराग्य और दूसरा स्वमान की स्थिति। बाबा ने कहा कि ये दोनों पीछे पीछे आपके आएंगे, आपको नहीं करना पड़ेगा, वो पीछे पीछे आएंगे। जैसे मान लीजिए सूर्य इधर है ना, आप सूर्य की तरफ अपना फेस करके जा रहे हैं तो पीछे क्या आएगी, परछाई बनेगी ना स्वतः, कि परछाई लाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आएगी। तो ऐसे ही जब हम बाबा को कहते हैं कि बाबा को हम नैनों में बसाते हैं, किस नैनों में, बुद्धि रूपी। तो जब हम बुद्धि रूपी नैनों में रखते हैं बाबा को, या छोटी छोटी बातों को छोड़ते हैं, बाबा ने तो ऐसे कहा जब छोटी छोटी बातों को छोड़ते हो तो बेहद की वैराग्य वृत्ति और स्वमान की स्थिति दोनों पीछे पीछे आती है, फंसते नहीं है। अब जैसे मान लो अगर देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो सोचें कि आज भोजन में ये बनेगा, आज दोपहर में ये बनेगा, शाम को अपने खाने पीने में ही लगे रहे, हाँ हमारा कपड़ा यहाँ प्रेस कराना, हमारा कपड़ा यहाँ भेजना दिन भर, तो क्या कहेंगे लोग, भाई इसी में लगे हैं तो देश का कब देखेंगे आप, है ना। तो छोटी छोटी बातें छोड़नी पड़ती है ना, यहाँ तो किसका है, पूरे विश्व के परिवर्तन की बात है ना? जी जी बहुत। तो बाबा ने और कहा है आज की मुरली में कि बाबा जो है अभी अव्यक्त हो गए ना, संपूर्ण हो गए, लेकिन बाबा जो है संपूर्ण होने के बाद भी, अव्यक्त होने के बाद भी व्यक्त में पार्ट बजा रहे ना अभी भी। तो बाबा ने कहा क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्यों कर रहे हैं बाबा? हम सभी से मिलने के लिए, और तुम समान बनने के लिए। हाँ, तो बाबा अपना भी समय संपूर्ण होने के बाद भी हम सभी के लिए दे रहे हैं, क्या? समान बनने के लिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा से स्नेह की निशानी या प्यार की निशानी क्या है? बाबा से स्नेह की निशानी क्या है? बाप समान बनना। बाप समान बनना अर्थात, बाप समान बनने के लिए क्या करना पड़ता है? बाबा ने कहा, बाबा से प्यार की निशानी है, जैसे आज कहा समान बनना, कई बार बाबा कहते हैं टर्न करना, अपने को बदल लेना, है ना? आप बाबा से केवल सुनते रहें और जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आए तो सुनना कहेंगे इसे? बाबा से सुनते हैं तो क्या आना चाहिए? हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। तो बाप समान बनना है, तो बाप समान बनना है अगर, जो बाबा हमें हमारे लिए इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, तो कैसे बनेंगे बाप समान? बाप समान भी बनना है तो फरिश्ता भी कैसे बनेंगे? इसका एक एग्जाम्पल है कि बाबा ने, जैसे कहते हैं ना कि वामन है ना, वामन रूप में किसको नाप लिया, मापा था किसको? बलि, बलि, बलि किसका राजा था? बलि थे ना राजा, तो उसको कितने कदम में माप लिया? 3 कदम में। वो 3 कदम कौन कौन से हैं मालूम है? एक ये, एक ये, एक यहाँ, और याद आया? संकल्प, एक संकल्प हो गया, दूसरा दृष्टि ना, और दूसरा वाणी, है ना? अगर इन 3 चीजों पर आपने कंट्रोल कर दिया तो जो माया है ना, जो कमी कमजोरी हमारे पास आती है ना, वो स्वतः खत्म हो जाएगी। इन्हीं 3 रास्ते से आती है ना माया, संकल्प, किसी चीज को देख के संकल्प चला, इच्छा उत्पन्न हुई, इस पर अगर आपका कंट्रोल है तो माया को आने का चांस है। तो संकल्प, संकल्प रूपी कदम है ना। दूसरा दृष्टि, दृष्टि से क्या है? बाबा कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो दूसरा हो गया दृष्टि। तीसरा है वचन, बोल। बाबा कहते हैं आपके बोल कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? बाबा ने कहा है कि आपके बोल ऐसे होने चाहिए, बोल ऐसे निकलने चाहिए जैसे फूलों की बरसात हो रही है, इतने सुंदर बोल, किसी का उमंग उत्साह जागृत हो जाए। तो ये जो 3 कदम है ना, संकल्प, दृष्टि और वाचा, अगर इन 3 बातों पर आप कंट्रोल रखते हैं, इनको नियंत्रण में रखते हैं, इनको आप बाबा के श्रीमत के अनुसार चलते हैं, तो क्या होगा? इन 3 आधार से ही एक तो माया कमजोर हो जाएगी क्योंकि इसी रास्ते से आती है, और दूसरा आप कैसा बन जाएंगे? बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, और बाबा ने कहा कि तपस्या का जैसे फाउंडेशन है क्या, बेहद का वैराग्य, तो इसमें क्या करना होता है? चारों ओर का किनारा है ना, चारों ओर का किनारा छोड़ देना होता है ना? अगर कोई भी किनारा आपने पकड़ा है, कोई भी सहारा है, तो बाबा क्या कहते हैं कि सभी सहारे, जितने भी आपने सहारे बनाए, सभी सहारे क्या हैं? खत्म होने, समाप्त होने। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि समझदारी इसी में है कि आप बाबा के कहने से, बाबा के स्नेह में छोड़ो, स्नेह में परिवर्तन करो, ऐसा ना हो कि जबरदस्ती छोड़ना पड़े, है ना। जैसे एक एज होती है, एक उम्र होती है कि इस उम्र तक आप स्वीट खाते हैं मान लीजिए, तो ये इंद्रियां है ना, इंद्रियों की भी एक सीमा है ना। इतने साल तक आपकी आंख बहुत अच्छा दिखाई देगा, थोड़ा और ज्यादा होगा तो, थोड़ा और ज्यादा होगा तो चश्मा लग जाएगा, थोड़ा और उम्र ज्यादा होगी तो डॉक्टर क्या कहेंगे, अभी आप चीनी नहीं खाना, आप मीठा नहीं खाना, फिर भी आप कहेंगे कि नहीं हम बचपन में तो खाते थे अभी भी खाएंगे, तो क्या होगा। अब वो जो चीज आपको मजा, जिसमें आनंद आता था ना, अभी वही चीज क्या बन जाएगी, सजा बन जाएगी, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सभी किनारों को छोड़ देना है। तो इसका आधार बाबा ने क्या बताया, एक का पाठ पक्का करना। अगर एक का पाठ पक्का करते हैं तो आपकी तपस्या फलीभूत होगी, पावरफुल होगी, सफल होगी। तपस्या कहां भंग होती है, जहां एक से कोई दो हुआ। तो तपस्या अर्थात एक का पाठ पक्का करना। हमेशा कई लोगों को क्या होता है, जो कहीं क्लास सुन रहे हैं या कुछ भी सुन रहे हैं तो क्या कहेंगे, फलाना भाई ने कहा, इन्होंने कहा, इन्होंने कहा। उनको क्लास कम याद होगा, किसने बताया, किसने वर्णन किया, कितना रमणीक ढंग से सुनाया, उसको सुनाएंगे। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, किसी से भी सुन रहे हो लेकिन क्या बुद्धि में हो कि ये बाबा की बातें हैं, सुना कोई भी रहा लेकिन तो सामने बाबा दिखाई दे। अगर बाबा के बदले आपको कोई सुनाई देगा, ऐसा दिखाई देगा जो सुनाने वाला बहुत अच्छा है, तो क्या होगा, आप उसको याद करने लगेंगे, फलाना भाई बहुत अच्छा है, फलाना बहन बहुत अच्छा एक्सप्लेन। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक सहारा हो गया, एक किनारा आपने पकड़ लिया, ये धोखा हो जाएगा। तो इसीलिए हमें हमेशा इस बात की स्मृति हो, एक का पाठ बाबा का, बाबा के अलावा और कोई भी सहारा ना हो, है ना। और इसके अतिरिक्त बाबा ने और क्या कहा कि बाबा से प्यार की निशानी अर्थात ये नहीं कि केवल केवल सुनना, लेकिन इसमें क्या करना होता है। जैसे बाबा ने कहा आज एग्जाम्पल में कि मान लो कोई निमित्त है, निमित्त ने कुछ कह दिया, तो कह दिया तो क्या करें, किसी के कहने से हमारी स्थिति बदल ना जाए, है ना। अगर इशारा दिया तो उसके आधार पर हम खुद को चेंज भी करें, है ना। तो ये भी बाबा ने कहा कि भी एक तपस्या का स्वरूप है। इसीलिए बाबा ने कहा आज कि न्यारा और प्यारा दोनों बनना है। हम प्यारा तो बनते हैं, प्यारा बनना बहुत सहज है, लेकिन न्यारा बनना जैसे जानकी दादी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती थी कि जैसे दो पैर हैं, है ना, तो दोनों पैर अगर कहें आपस में कि हम दोनों का आपस में बहुत प्यार है, हम दोनों एक ही साथ रहेंगे, तो क्या होगा, दोनों पैर अगर साथ ही रहेंगे तो दोनों पैरों का अगर आपस में प्यार है तो इसकी निशानी क्या है, चलते रहो आगे पीछे, सपोर्ट दो केवल। तो प्यार की निशानी अर्थात केवल साथ साथ रहना नहीं लेकिन सहयोगी बनना, किसी को हेल्प करना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि यदि कोई निमित्त हमको इशारा भी देते हैं तो ये परिवर्तन करना, अपने को टर्न करना, ये बहुत जरूरी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि प्यारा बनो और न्यारा भी बनो। तो बाबा तो कई बार कहते हैं कि प्यारा बनने से पहले भी क्या बनो, न्यारा। पहले आप न्यारा बनेंगे ना, कोई भी चीज जब न्यारी होती है ना अलग, तो वो प्यारी बनती है। न्यारी चीज किसी से अटैच नहीं होती, अलग बिल्कुल, है ना। तो इतना हमारा आपस अपना ध्यान इस बात पर है कि पहले हमें न्यारा बनना है, पहले डिटैच होना है, फिर प्यारा की बात आती है। जी जी जी, इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि बाबा जो है पहले क्या है, जैसे कहते हैं ना प्यार का सागर है, तो बाबा कहते हैं प्यार के सागर से पहले भी बाबा क्या है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ऑलमाइटी अथॉरिटी अगर नहीं है तो क्या होगा, अटैच हो जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि किसी से भी संबंध में भी आते हैं, संपर्क में भी आते हैं,